ओम शांति। आज हम सभी अपने को पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठा हुआ अनुभव करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे बिल्कुल सामने बैठे हमें अव्यक्त मूल्य सुना रहे हैं। 23 जनवरी 1970, सेवा में सफलता पाने की युक्तियां, सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। बाबा पूछते हैं, ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बंबई की एक पार्टी बाप दादा से बंबई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो, बाबा पूछते हैं, उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। बाबा कहते, यह स्पीकर्स और ब्राह्मण सब स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो, जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है। बाबा कहते, जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। बाबा कहते, यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो, यह ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्त प्रसन्नता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी, उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। बाबा कहते, आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए, वे शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न हैं। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हीं बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, बाबा कहते, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो। बाबा कहते, अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, उस पर ध्यान दो। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में तो बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का बाबा कहते ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय ब्रह्ममुखता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट होने चाहिए, वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे करेंगे, यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। अब कहते यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता बाबा कहते देखने में आई। बाबा कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना यह तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। बाबा कहते अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वह शुद्ध रिस्पांस मिलता है, वह मिक्स हो जाता है क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। बाबा कहते अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पांस स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पांस स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है। कोई कभी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। बाबा कहते यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ना है। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मणका बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मणका हूँ यह नशा रहना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं मणकों को कहाँ रखा जाता है। माला में मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मणका है यह समझना है। कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी, बाबा कहते उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी बहुत होता है तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता। अव्यक्त भक्ति में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे वहाँ, यहाँ ही छोड़कर जाएंगे। अब कहते उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी लौकिक पना न हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना, यह भी मर जीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। दादा कहते लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करे हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है ना? वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के बांध से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट्स कितने हैं और कौन सी हैं? बाबा कहते सब्जेक्ट मुख्य हैं चार, ज्ञान योग धारणा और सेवा। इनमें भी मुख्य कौन से हैं? यहाँ से ही शांति का टॉपिक, शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्कूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल है, सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? तब कहते यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे, इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना है। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा? इक्कीस जन्मों में, इक्कीस युगलों में ऐसा युगल कब मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज बाबा कहते पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो, जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना, तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूरत हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूरत समझना यही बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण बाबा कहते साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। बाबा पूछते हैं, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है, ऊंच पद किसको समझते हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है, लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंच रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। बाबा कहते सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह भला छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। बाबा कहते जो जास्ति पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन यह संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। भला जिस्मानी सर्विस भी करते रहो, जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं, उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती हैं, जैसे यहाँ जो आए उन्हों को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो। बाबा कहते फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। बाबा कहते सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ही चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण हैं। बाबा कहते सदैव फॉलो फॉदर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है, यही सर्विस है। समय भला ना भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकते हैं। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बात की याद दिलाएं, यह तो सहज सर्विस है ना? जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना? यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा या मस्तक जो है यह भी, तुम्हारा यह मस्तक जो है यह भी एक विचित्र का चरित्र दिखलाए। यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। अब पूछ रहे हैं, मधुबन में आके मुख्य कर्तव्य क्या किया? जैसे कोई खान पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है? खान से जितना ले सकते हैं उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। तो आप खान पर आए हो ना? बाकी सेवा केंद्र हैं इस खान की ब्रांचेस। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है जितना ले सके, तो यहाँ भी जितना ले सको ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वह थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन सभी कुछ ले लेवे। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है तो एक एक को संपन्न बनाना चाहते हैं। जितना यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे, बाबा कहते उतना ही भविष्य में राज्य पाने के संपन्न होंगे। इसलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गवाना। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो, लेकिन इस पदम भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि हम नींव हैं, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। बाबा पूछते हैं, याद का रिस्पॉन्ड मिलता है? बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होगी, इस गुण को परिवर्तन में लाना। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है, औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। बाप दादा दो होते एक है ना, वैसे भला कितने भी हो लेकिन एक मत होकर चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना बाबा पूछते लिया है? बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना, अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और अपनी असली स्थिति क्या है, वह याद आती है? बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परम धाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति का टेस्ट करने। टेस्ट करने के बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति, दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। बाबा कहते हैं यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती हैं। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्नेह और शक्ति वरदान रूप में मिलती हैं। बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे? गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है? अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना जो भरना चाहे वह भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने के ही यह दिन है। बाबा कहते अभी का एक सेकंड बहुत फायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गंवा भी देते हो ना, तो यहाँ एक सेकंड इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंद निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराते। जात को सुना है ना, एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में फर्क रहता है। जात को अर्थात एक धक से खत्म। बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे जिनको मनसा में भी संकल्प ना आए? इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बली को ही महान बल की प्राप्ति होती है। बाबा कहते सर्वशक्तिवान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं। बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों की जायदाद जन्मसिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। शक्तिवान के आगे कमजोरी ठहर नहीं सकती। आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक चकते हैं। बाबा कहते डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्कूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, वह तो वहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? बाबा पूछते हैं प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है? भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना बाबा कहते अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतिंद्रिय सुख अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा को युगल बनाया है, वह देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए, साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। बाबा कहते यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है, सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा बाबा पूछ रहे रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, अचानक लॉटरी मिली है। कहते लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो कभी खत्म हो ना सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है, यह नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है, चुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं, यह याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं, बाबा कहते हैं साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे, और वह कैसे रहेगी, जैसे दीपक होता है वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती इन दो चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है, ज्ञान घृत और योग है बत्ती। अगर यह दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। बाबा कहते 11 दिन भी इस संगम युग के बहुत हैं। ऐसे मत समझना कि हम तो 11 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस काम के हिसाब से यह 11 दिन भी बहुत हैं। इसलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी सो ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में सो की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पांव को पक्का मजबूत बनाओ, कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना, अचल आकार जिसको कोई हिला ना सके। बाबा पूछते 3 मास में 3 वर्षा लिए हैं। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। युगल रहते हुए अकेले रहे हो, युगल रूप में रहते हो, अकेला रूप तो नहीं है। बाबा कहते अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना, आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पाट बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है, और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल, आत्मा और परमात्मा यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूरत बनना है बस। देह के युगल रूप नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा, अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है, ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ नहीं, तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। अब पूछते सभी से प्रिय चीज क्या है, प्रिय चीज अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अकेला भी बन जाना है फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रदान करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो? कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है, इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्विघ्न रहना है, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।